ますって。दर्शन चरण गुण नायक कर्म की पाए केवल ज्ञान पाए प्रभु दये भजो शिवराय जिन वाणी के ज्ञानते हो तत्व श्रद्धा चरण धारी केवल लह पावे पद निर्वाण मेरी चंद आलाद कर माधव चंद प्रधान नमो जास उचास ते जाने निज गुण खान लब्धि सार को पाय के दरि के छपरासा है प्रवचन सार सो समय सार विकार।
प्रथमोक्षण सम्यक से पूर्व होने वाली जो पांच लब्धि है उसकी चर्चा करने के पहले कर्म के नाम और उस संबंधी कुछ प्राथमिक जानकारी हम ले रहे हैं। हमने आठ मूल प्रकृतियों के नाम अभी देखे, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी और अंतरा ये तो भाति कर्म कहलाते हैं और वेदनी आयु नाम और गोत्र ये अघाति कर्म है। उसमें से ज्ञानावरण की पांच उत्तर प्रकृतियां हैं, दर्शनावरण की नौ है, मोहनी की 28 है और अंतराय की 5 है, ये तो हमने देखी थी। अब वेदनीय की 2 है, सातावेदनीय और असातावेदनीय। आयु की 4 है, हमें प्रत्येक को मालूम है कि देवायु मनुष्यायु तिरेंचायु और नरकायु। नाम कर्म की 93 है, 93 उसकी बाद में चर्चा करेंगे। गोत्र कर्म की 2 है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। अब ये जो 93 प्रकृतियां हैं नाम कर्म की उसकी अब हम चर्चा करेंगे क्योंकि उसकी में तो नाम बहुत सारे हैं, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है तो 93 कैसे याद रखना, तो उसमें कम करेंगे हम 42। तो उसको कहते हैं पिंड प्रकृति, हम बताएंगे पिंड प्रकृति यानी कि हम उसमें से कुछ तो ग्रुप्स अलग निकालेंगे तो याद हम आसानी से रख सकते। जैसे गति नाम कर्म जो है वो 4 प्रकार का है, तो हम गति नाम कर्म कहेंगे तो वो 4 भेद अपने आप ख्याल में आ जाएंगे। तो गति नाम कर्म ये पिंड प्रकृति कहलाती है, क्या कहते उसको, पिंड प्रकृति। और जो सिंगल सिंगल है उसको अपिंड प्रकृति कहते हैं। तो हम पिंड प्रकृति रूप से याद रखेंगे तो याद रखने में कम होता है, 93 के बदले में 42 ही याद रखने पिंड अपिंड मिलकर। तो उसमें से जैसे गति नाम कर्म है तो मनुष्य गति देव गति नर गति तीन इंच गति ये 4 गति नाम कर्म है। वैसे जाति नाम कर्म है, एकेंद्रीय जाति द्विन्द्रीय जाति तीनद्रीय जाति चतुरिंद्रीय जाति और पंचेंद्रीय जाति, ये जाति नाम कर्म 5 प्रकार का है। देखो वैसे वैसे नाम कर्म के उदय में वैसे वैसे गति और जाति मिलती है। अभी हमारा मनुष्य गति नाम कर्म का उदय चल रहा है, हम मनुष्य है, मनुष्य जैसे भाव भी अपने होते हैं, अपने मनुष्य गति चल रही है। वैसे हमारा पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय चल रहा है, मनुष्य गति नाम कर्म और पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म, ऐसे हर एक में समझना। यहाँ पेज नंबर 18 हिंदी में लिस्ट दी है नाम कर्म की, गुजराती में कौन सा पेज है, 17, एक कम जानना अभी इसके आगे। हाँ तो इसमें 14 तो पिंड प्रकृति है, देखो क्रम से 14 तक हम देखेंगे फिर उसका एक एक का मैं अर्थ बताऊंगी। गति जाति शरीर बंधन संघात संस्थान सहनन अंगोपांग स्पर्श रस गंध वर्ण गत्यानुपूर्वी और विहायु गति, इसमें तो एक से अधिक है। बाद में जो जो हम गिनेंगे वो सिंगल सिंगल है, उसको भी कैसे याद रखना उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो ये जो पिंड प्रकृतियां है, पहले हमने देखी गति नाम कर्म चार प्रकार के, जाति नाम कर्म पांच प्रकार का, अब शरीर नाम कर्म है। तो पांच प्रकार के शरीर के नाम हमने पहले सुने थे, सिद्धांत प्रवेशिका थी हम सब कहोगे, आपको याद है, पता है पांच शरीर के नाम, औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कामान शरीर। अब उसके आगे नाम कर्म जोड़ देना, ये हमारा आहारक औदारिक शरीर हुआ, परंतु औदारिक शरीर नाम कर्म नाम का एक नाम कर्म है, ख्याल है ना, और उसका उदय चल रहा है अभी। मनुष्य जीवों को कौन से शरीर नाम कर्म का उदय है, तो औदारिक शरीर नाम कर्म, क्योंकि जो औदारिक हम प्रति समय जैसे कर्म का ग्रहण है ना, कर्म बांधते हैं, वैसे शरीर के परमाणु भी प्रति समय हम लेते हैं और छोड़ते हैं। तो हम औदारिक जाति के ही परमाणु क्यों लेते हैं, वैक्रिक जाति के क्यों नहीं लेते, क्योंकि हमारे औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय चल रहा है। जो देवगति के है, नारकी है, उनके वैक्रिक शरीर नाम कर्म का उदय है, तो वे वैसे ही परमाणु ले लेंगे। इन सब में वैसे वैसे नाम कर्म का उदय निमित्त है। अब जो गोरा है वो गोरे ही परमाणु क्यों लेता है, काले परमाणु क्यों निर्धारण करता है, क्योंकि एक नियम है, हर समय अनंत परमाणु हम ग्रहण करते हैं, शरीर के भी हो, कर्म की बात नहीं, हर समय नए अनंत परमाणु आते हैं, पुराने में से अनंत निकल जाते हैं, और फिर भी जैसे हमने कल आईने में देखा था वैसे आज भी दिख रहा है, परंतु कल के परमाणु कहीं उड़ गए और इन नए परमाणु उसी ढांचे में अभी डल गए, तो हमें लगता है नहीं हम ऐसे ही के ऐसे है, पांच साल के देखो हमने कैसा मेंटेन किया है। परंतु जैसे अपने गांव की नदी तो रोज वैसी की वैसी वही की वही दिख रही है, परंतु उसमें जो पानी है वो कल का पानी तो आगे चला गया और नया पानी ऊपर से आ गया, वैसे यहाँ शरीर तो वैसे के वैसे दिख रहा है, उसमें से अनंत परमाणु प्रति समय निकल जाते हैं और अनंत नए आते हैं। कभी बर्थडे किसका मनाना, जो गए उसका, कभी आ रहे उसका। तो हम तो वही के वही, मैं तो वही का वही हूँ, परंतु ये परमाणु अनंत आते हैं और चले जाते हैं, इससे मेरा कोई नाता नहीं है, ख्याल है ना। और उसमें जो निमित्त कौन है, कर्म, ये कर्म के मेहमान है, हमसे कुछ नाता नहीं उनका। कर्म अभी हमारे यहाँ जिन प्रदेशों, जिस आकाश के प्रदेशों में मैं स्वयं रहता हूँ, उसी आकाश के प्रदेशों में कर्म रहते हैं। अब ये कर्म है वो उसके अन्य और रिलेटिव्स को बुलाते हैं, और हमने क्या माना, ये मैं हूँ, है ना, ये हमको तो भिन्नता पहचानी। कर्म के नाम रखना ही हमारा प्रयोजन नहीं है, ये भिन्न भिन्न कर्म है और उसका भिन्न भिन्न कार्य है, और उसको हम अगर पहचानते हैं तो हमें अपना भिन्न स्वरूप ख्याल में आने में बहुत मदद होती है। तो ये जो अलग अलग अभी हम चर्चा करेंगे, स्पर्श रस गंध वर्ण सारण की चर्चा करेंगे, तो जैसे जैसे नाम कर्म का उदय है उस जाति के शरीर के परमाणु जीव ग्रहण करता है। तो ये गोरा आदमी गोरा ही दिखता है और वो गोरे परमाणु ही ग्रहण करता है। अभी शुरू में कुछ काले बाल के परमाणु ऐसे लेता है, ग्रहण करता है, और फिर कुछ कालांतर के बाद अवस्था पलटती है, शरीर की अवस्था भी उसके अपने कारण पलटती है, और फिर ये रोने लगता है। जीव तो वैसा का वैसा रहा, अपने अनंत गुण स्वरूप वैसा ही रहा, फिर भी शरीर की अवस्था पलटती है, परमाणु की अवस्था पलटती है, कुछ अधिक मात्रा में निकल जाते हैं, क्रुश होता है, या कुछ अधिक मात्रा में आते हैं, और यही चिंता से बेचारा मरा जाता है। जैसे बंदर की कहानी आती है ना, कि पतझड़ में वो वृक्ष से पन्ने झड़ जाते हैं या पीले पड़ जाते हैं, तो वो बंदर लेके हरे रंग का वो उसको कलर करेगा तो झड़ने से रहे, ऊपर से कितना भी उसको कलर करने से क्या फायदा, और वो उससे उसके क्या लेना देना है, वो झाड़ पर रहता है और उसके पत्ते झड़ जाए और रहे, उससे क्या लेना देना। वैसे हम किसने पूरा रात दिन किसने बिता रहे, ये जो पुद्गल परमाणु की रचना हो रही है वो एक तो ऐसे के ऐसे रहना चाहिए, और समझो उसमें कुछ चेंजेस हो गए तो ऊपर से कलर करेंगे। अब ये एक एक जाति है, नाम कर्म के हम क्या क्या उसके फल बनते हैं उसकी चर्चा करेंगे। गति और जाति तो हमने देखी, शरीर नाम कर्म के उदय में उस जाति के परमाणु का ग्रहण होता है, जैसे औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, तेजस शरीर, कारमान शरीर, आहारक शरीर एक बीच में रह गया। तो ये जो कारमान शरीर नाम कर्म की बात कर रही हूँ मैं, कारमान शरीर नाम कर्म के उदय में नए कर्म ग्रहण किए जाते हैं, कर्म की बात। और अन्य जो है ना चार, औदारिक, वैक्रिक, आहारक और तेजस, इन चार शरीर नाम कर्म के उदय में ये अन्य जो है जिसको नौ कर्म शरीर कहते हैं, नौ कर्म शरीर के परमाणु ग्रहण किए जाते हैं, यानी शरीर, मन, वाणी और तेजस शरीर के परमाणु ये अन्य चार शरीर नाम कर्म के उदय में लिए जाते हैं। और कारमान शरीर नाम कर्म के उदय में कर्म का ग्रहण होता है, क्योंकि ये नया कर्म क्यों ग्रहण किया जाता है, उसके पीछे कारण तो कुछ होना चाहिए। मौनी के उदय में हमने देखा था नया कर्म बनता है, परंतु उसमें तो स्थिति और अनुभव बनते, हमने चार प्रकार के बंध देखे थे अभी अभी, कौन से, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभव बंध। तो प्रदेश और प्रकृति काहे से बनते, तो योग से बनता है। और स्थिति और अनुभव कषाय, कषाय यानी मोह, राग, द्वेष, सबको मिलकर कषाय कहा है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, इन सबको मिलकर एक कषाय नाम है। और योग अलग, तो ये योग क्या बला है, हा? तो पुराने नाम कर्म का उदय है, कौन सा, पुराना जो कारमान शरीर नाम कर्म का उदय है उसके उदय में यहाँ जीव में ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जिसको भाव योग कहते हैं। इसमें निमित्त कौन सा है, पुराना कारमान शरीर नाम कर्म का उदय, उसके उदय में जीव में ये योग की योग कंपनी, योग यानी आत्म प्रदेशों का कंपन, ये क्यों उत्पन्न होता है, तो पुराना नाम कर्म का उदय, सभी नाम कर्म नहीं, कारमान शरीर नाम कर्म का उदय। और उसके उदय में यहाँ जीव में जो विशिष्ट योग्यता हुई उसके कारण वो मनोवचन काय के जो परमाणु ग्रहण करेगा, उसका जो अवलंबन लेगा, मन द्वारा जानने की कोशिश करेगा, काय की प्रवृत्ति करेगा, विचार भी चलेगी ना मन के द्वारा, बोलने की क्रिया होगी, ये जो सारी क्रियाओं में वो जुड़ जाता है, तो उसके आत्म प्रदेशों का जो कंपन होता है उसको कहते द्रव्य योग, और उसके कारण नए कर्म ग्रहण करता है। तो ये जो यानी शरीर नाम कर्म के उदय में जीव में योग उत्पन्न होता है और योग से नए परमाणु ग्रहण किए जाते हैं। ये बात भी मुझे बहुत सालों तक नहीं पता थी, करना नहीं उसका अभ्यास होते हुए भी, पंचासी काय के ऊपर गुरुदेव के प्रवचन है, प्रवचन प्रसाद, उसमें ये बात उन्होंने बताई है कि पुराने नाम कर्म के उदय में ये योग होता है। कभी पता चला, अरे इतने ही सालों से पढ़ते आए और ये बात बैठती नहीं थी, योग उत्पन्न क्यों होता है, कि देखो सहयोगी और अयोगी, सहयोग कब तक कहा है, तेरहवें गुणस्थान तक सहयोग है, और वहां तक ये कारमान शरीर नाम कर्म का उदय है। अयोगी वाले को वो उदय भी नहीं है, तो वहां योग भी नहीं है, वहां उसको बंध भी नहीं है। तो गुरुदेव का तो करणानियोग का गजब का अभ्यास था, छोटे छोटे ऐसे वाक्य आते तो विचार करते कि हम इतना पढ़ रहे करणानियोग, फिर भी ये बातें अभी तक वो बैठती नहीं थी, और एकाध वाक्य में वो बता देते थे, तो इतना सूक्ष्म चिंतन था उनका। तो ये जो कारमान शरीर नाम कर्म के उदय में योग उत्पन्न होता है, उससे कर्म ग्रहण होता है। और अन्य जो शरीर नाम कर्म है ना, औदारिक हो गया, व्यतिरेक होगा, तो उसके निमित्त में जो योग होगा उसके कारण शरीर के परमाणु ग्रहण होते हैं। एक ही टाइम दोनों का उदय चल रहा है, कारमान शरीर नाम कर्म का भी उदय, जिसको कारमान शरीर नाम कर्म भी है, और अभी हमें औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय भी चल रहा है, तेजस शरीर नाम कर्म का उदय भी है, और वैसे योग में वैसे वैसे परमाणु हम हर समय ग्रहण करते हैं। ये शरीर नाम कर्म की बात थी। अब आगे वाला बंधन नाम कर्म। अब ये जो बंधन नाम कर्म है उसी नाम के है, औदारिक बंधन नाम कर्म, वैक्रेयिक बंधन नाम कर्म, आहारक बंधन नाम कर्म, तेजस बंधन नाम कर्म और कारमान बंधन नाम कर्म। यानी जो नए नए परमाणु आते हैं ना कर्म के हो या शरीर के हो, वो पुराने कर्मों के साथ या पुराने शरीर के साथ आकर मिलते हैं तो उसके साथ बन जाते हैं, उसमें बंधन नाम कर्म निमित्त है। अब उसी नाम का संघात नाम कर्म भी, कि औदारिक संघात नाम कर्म, वैक्रेयिक संघात नाम कर्म, आहारक संघात नाम कर्म, तेजस संघात नाम कर्म और कारमान संघात नाम कर्म। उसके कारण ये जो उनका एक क्षेत्र वाला बंध होता है ना, एक साथ जुड़ते हैं, पहले ऑलरेडी थे और नए आकर जुड़ते हैं। अब ये शरीर है और वहाँ जो रचना होती है शरीर की, तो शरीर की रचना छिद्र रहित होती है। देखो यहाँ लिखिए, आगे इसका डिटेल आगे लिखा है, पेज नंबर इसमें हिंदी में 24 है, गुजराती में 22 है। हाँ, संघात नाम कर्म। अभी कोई पूछ रहा था मुझे संघात नाम कर्म आपने पूछा ना, देखो इसमें क्या लिखा है, जिसके उदय में मिला। हाँ, शरीर औदारिकादि शरीर छिद्र रहित होते हैं, यानी छिद्र रहित रचना होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ तक हाथ बना, बीच में गैप है और आगे उंगली बन गई, ऐसा तो नहीं होता ना। ये उंगली में बीच में ही होल है या हाथ में बीच में ही होल है, ऐसा कुछ रचना नहीं होती है, तो छिद्र रहित उसकी रचना होती है। और कैसा, एक क्षेत्रावगाह, एक ही क्षेत्र में बनकर ऐसा पूरा एक पिंड रूप रचना होती है, शरीर एक पूरा सिंगल ऐसा एक बन जाता है, उसके एक क्षेत्रावाह रूप से एकत्वपना प्राप्त करता है, यानी उसका एक पिंड बन जाता है, औदारिक शरीर एक ढांचा बन जाता है ना पूरा, बीच में कोई गैप नहीं रहती है, तो उसको उसमें ये संघात नाम कर्म निमित्त है, ये संघात नाम कर्म का कार्य है। और वैसे ही पांच नाम है अभी हमने देखे थे, तो शरीर नाम कर्म, बंधन नाम कर्म और संघात नाम कर्म, इन सबके नाम वे ही है। तो शॉर्ट में बताना है तो शरीर नाम कर्म में इसको हम इंक्लूड कर देते, यानी पांच 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 पंद्रह गिनाने के बदले कभी कभी हम पांच ही गिनते हैं तो उसमें ये समझ में आ जाता है, तो हाँ छिद्र रहित हो जाता है, क्योंकि एक पूरा स्कंद बन जाता है ना, जैसे कारमान शरीर आखा एक बन जाता है, तेजस शरीर है, औदारिक शरीर है, तो एक पूर्ण स्कंद रूप से रचना होती है, एक पिंड बन जाता है उसका, तो उसमें वो संघात नाम कर्म निमित्त है। इसके आगे संस्थान नाम कर्म, संस्थान आकार को कहते हैं, तो उसमें भी छह अलग अलग संस्थानों की यानी इसका वर्णन आता है। देखिए इसके नाम देखिए, ये छह प्रकार का है, समचतुरस्र संस्थान यानी समान सुडोल आकार, यानी इसको हम प्रोपोर्शनेट बॉडी कह सकते हैं। नगरोध परिमंडल यानी जैसे वट का वृक्ष ऊपर बड़ा है, नीचे से एकदम पतला है, छोटा है, नैरो है, वैसे कोई ऊपर से बड़ा है और नीचे कम है, तो उसको नगरोध परिमंडल ऐसा उसका नाम है उस आकार का। स्वाति संस्थान यानी ऊपर का भाग पतला और नीचे का भाग चौड़ा। कुब्जक संस्थान यानी कुबड़ा, गुजराती में शू कुछ कुंदो, हाँ। वामन संस्थान यानी ठिंगना और हुंडक संस्थान यानी अनेक प्रकार के अवक्तव्य आकार। देखो ऐसा नहीं कि जैसे तो सर्वार सिद्धि के तो एक हाथ प्रमाण दे है, तो उनको कौन सा होगा? हाँ, उनको तो समचतुरस संस्था नहीं होता, उनको वामन नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ होते ही इतने हैं। ख्याल है ना, ऐसा किसी ने प्रश्न पूछा था कि वहाँ तो एक हाथ इतनी ऊंचाई होती है, हाइट उनकी, लंबे नहीं होते अपने जितने, परंतु उनके हाइट उतनी ही होती सबकी, सर्वों की अपनी अपनी हाइट जो है वहाँ के देवों की वो निश्चित है, तो उसमें हम उनको टीना नहीं कह सकते। उनको तो देवों को तो समय चतुरस्व संस्थान ही होता है ना। और कुंडक यानी हम जिसका डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ऐसा जो अवक्तव्य आकार है, जैसे कोई वनस्पति है और जो कुछ अन्य अन्य है, तो उसके कुंडक संस्थान है। नहीं, ये सभी जीवों की अपेक्षा। और कुंडक संस्थान ऐसे भी नारकियों को तो कुंडक संस्थान कहा जाता है नारकियों के, और वनस्पति का एक वगैरह आदि जो है उनके भी कुंडक संस्थान होता है। यानी उसका आकार हम ऐसा डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि ये विशिष्ट आकार है उनका। अब जो अंगोपांग नाम, अंग और उपांग, अंग यानी मेन जो अपने अवयव है मुख्य अवयव, और उपांग यानी छोटे छोटे अवयव, जैसे हाथ पैर ये मुख्य अवयव है इसको अंग कहेंगे, उंगली है इसको उपांग कहेंगे। तो उसमें जो नाम कर्म का उदय निमित्त है उसको कहते हैं अंगोपांग नाम कर्म। अब एक इंद्रियों को तो कोई हाथ पैर नहीं होते, तो उनको अंगोपांग नाम कर्म का उदय भी नहीं रहता, तो ये किसको होता है? तो त्रस जीवों को होता है। त्रस किसे कहना पता है? दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों को त्रस जीव कहते हैं, और उनको ये अंगोपांग नाम कर्म का उदय वहाँ निमित्त होता है, तो उनके ऐसे अवयवों की रचना होती है। उनके भी अंग होते हैं, दो इंद्रिया जीवों को भी। अब उसमें भी तीन अलग अलग है, जैसे औदारिक शरीर है तो उसमें भी अंग और उपांगों की रचना होती है, तो उसको कहते हैं औदारिक अंगोपांग। वैक्रियक जो है देव नारकियों को, उसमें वैक्रियक अंगोपांग। और आहारक शरीर में भी है ना, सफेद एक हाथ सफेद पुतला निकलता है मनुष्य का, आहारक शरीर जो निकलता है उसमें भी अंग और उपांगों की रचना होती है, तो वो आहारक अंगोपांग ऐसा नाम कर्म वहां निमित्त होता है। अब सहनन नाम कर्म, ये सहनन नाम भी हमने बहुत बार सुना है, वज्र ऋषभ नाराज सहनन हमने सुना है ना, जो चरम शरीर होता है उसी भव में मोक्ष जाने वाला, तो उसको तो वज्र ऋषभ नाराज सहनन ही होता है, वो ऐसा ही सहज होता है कि पूर्व भव में ऐसे उसके नाम कर्म बनते हैं जिसका उदय वो अंतिम भव में उसको होता है। तो वज्र ऋषभ नाराज सहनन है इसलिए उसने मदद की, इसलिए वो मोक्ष गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो सातवें नरक में जाने वाला मनुष्य और तिर्यंच है कि जो पाप के फलस्वरूप सातवें में जाता है ना, उस मनुष्य और तिर्यंचों को भी ये वज्रषभ नाराज सहनन होता है। देखो सहनन जो है उसका उदय मनुष्य और तिर्यंचों के ही पाया जाता है, देवों में सहनन नाम कर्म नहीं होता, उनको हड्डी बिड्डी नहीं होती, न नारकियों में होती है। यानी वैक्रियक शरीर के साथ सहनन नाम कर्म का उदय नहीं पाया जाता, परंतु जो नरक में जाने वाला है ना, सातवें नरक में जाने वाला ऐसा जो मनुष्य तिर्यंच है उसको ये वज्र ऋषभ नाराज सहनन होता है। हाँ, ये जो सहनन है वो जन्म से मरण तक वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन फेरफार नहीं होता। जैसे वो तो आता है ना तंदुल मत्स्य की कथा कि वो तो राघव मत्स्य बड़ा मत्स्य है, वो तो उसके मुंह में इतने मच्छी आते जाते हैं, वो तो सोया है, और वो छोटा मत्स्य उसके शरीर के आधार से रहता है, और वो देखता रहता कि इतनी मछली आती जाती, मैं होता तो इसको खा डालता, खाई उसने एक भी नहीं, और परिणाम ऐसे भयंकर किए तो उसके फलस्वरूप वो सातवें नरक में जाता है, दोनों खाने वाला भी और मैं इतना खा डालता सोचने वाला भी, तो दोनों को ही वज्र औषध नाराज सहन है, तभी तो सातवें नरक में जाएंगे। बिना उसके वो इतना सातवें नरक का पुरुषार्थ नहीं कर सकता। आजकल के जो हम पंचम काल के जीव देख रहे हैं ना, विपरीत पुरुषार्थी, हाँ सद्दाम हो या लादेन हो या और वो ही हो, तो वो भी अभी सातवें नरक के लायक नहीं है, क्योंकि पंचम काल में तो नीचे के तीन सहनन ही होते, उत्कृष्ट सहनन नहीं होता इस काल में। ऐसी बहुत करणानियों के ऐसे बहुत अलग अलग नियम है। जैसे द्रव्यलिंगी हम जो बात करते हैं कि नवे ग्रहवेक में जाने वाला या द्रव्यकों में जाने वाले, उनके भी ऊपर के तीन सहनन हो तो ग्रहवेक में जा सकते हैं। यानी पांचवे काल में कोई ऐसा द्रव्यलिंगी भी नहीं होगा कि जो द्रव्य ग्रहवेक के लायक पुरुषार्थ करेगा। भावलिंगी भी नहीं जाएंगे आजकल के ग्रहवेकों में, कोई मुनि पंचम काल के जाएंगे ही नहीं। ऐसे ये अलग अलग नियम है, और ये नियम इतने फिक्स है कि जो अन्य मति की कुछ अलग अलग कल्पनाएं होती है उन सबका निराकरण हो जाता है। चरम शरीर यानी उसी भाव में मोक्ष जाने वाले, स्त्रियों को तो नीचे के तीन ही सहने होते हैं, ऊपर के तीन होते ही नहीं है, तो स्त्री को मोक्ष तो बिल्कुल होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि उनको ये उच्च प्रकार के सहनन होते ही नहीं है, नीचे के तीन सहनन होते हैं। तो उस बहुत नियम है ऐसे कि हम बिल्कुल आंखें बंद करके वो रूल आउट कर सकते हैं। अन्य मति की मान्यता है नहीं जाती, स्त्री तो छठे ही नरक तक जा सकती है, सातवें नरक में जा ही नहीं सकती स्त्री। कौन से नरक तक कौन से सहनन वाला जीव जा सकता है इसके भी नियम है, सारे बहुत सारे नियम है, लेशा के वो सहनन वाले और अलग अलग ऐसे, किसको कौन सा उदय होता है उसके भी नियम है। इसकी बहुत डिटेल है, परंतु अभी हम इसकी पहचान करेंगे ना ये क्या है, फिर जिसको और गहरा अध्ययन करना है तभी तो शास्त्र वो सारे हमारे उपलब्ध है, और जरूर इसका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इससे तो द्रव्यानियोग के सिद्धांतों को दृढ़ता मिलती। बिल्कुल द्रव्यानियोग तो कार्यकारी है, उससे तो हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा, परंतु उसमें जो करणानियोग से बहुत दृढ़ता आती है, तभी हम आगे पढ़ेंगे। देखो हाँ, ये हम ऐसा डिराइव कर सकते उल्टा कि वो तंदुल मत से भी जाता है तो उसको वज्र औषध नाराज सहन नहीं होना चाहिए, ऐसा हम डिराइव कर सकते उल्टा। हाँ सातवें में नरक में जाने वाला उसको तो, हाँ उसको अभी उसमें हमें तो पता नहीं, हम तो शास्त्र से ही उनके नाम सुने, हमने तंदुल मत्स्य को हमने ना देखा है ना कुछ, आगम में बात आती है ना ये तो। द्विन्द्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय और पंचेन्द्रिय आदि में उससे आगे लेना सबको, यहाँ लिखा ना त्रस जीवों को होता है, अंगोपांग के नीचे लिखा, देखो त्रस जीवों में इसका उदय पाया जाता है, और सहनन में भी ऐसा ही है, सहनन भी है ना एक इंद्रियों में उसका उदय नहीं होता, द्विन्द्रियादिक तिर्यंचों में और मनुष्यों में होता है। सहनन किसको होता है, सहनन किसको होता है यानी हड्डी किसमें होगी, औदारिक शरीर में होगी, औदारिक शरीर किसको होता है मनुष्य और तिर्यंचों को, पर तिर्यंचों में तो पांच वैरायटी है, एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चतुर इंद्रिय पंच इंद्रिय, परंतु एक इंद्रियों में वो सहनन नहीं होता, ये शरीर की मजबूती वगैरह वो तो अलग टाइप का उनका शरीर की रचना होती है, तो त्रस जीवों में ही सहनन पाया जाता है, यानी द्विन्द्रिय आदि कों को भी ये सहनन होगा। हाँ तो उसमें ये जो छह नाम लिखे ना, वज्र ऋषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन, कीलित सहनन और असंप्राप्त अस्रुपातिका, दोनों को मिलकर असंप्राप्ता स्रुपातिका ऐसा लिखा। देखो वज्र है ने वो वज्र जैसा अभेद्य कहते हैं ना, हाँ तो सबसे कठिन वज्र कहा जाता है, तो वज्र जैसे जिसके हड्डी है और हड्डी का वेष्टन पेरियोस्टियम जिसको कहते हैं, हड्डी के ऊपर का कवरिंग, वो भी वज्र का है। और नाराचेने उसके जो जॉइंट्स है वो हड्डी वज्र से ही किलित है, जैसे ये दो हड्डियां है और वो जैसे लोहे का कीला अंदर डालते हैं तो उसको कहते किलित है, तो उसको नाराज कहते हैं। यानी वज्र की हड्डी, वज्र का वेष्टन और वज्र का नाराज, ऐसे जिनकी है उसको कहते हैं वज्र ऋषभ नाराज। ऋषभ यानी वेष्टन, उसका वेष्टन कवरिंग। वज्र नाराज यानी हड्डी तो वज्र समान है परंतु उसका जो वृषभ जो वज्र का नहीं है, यानी उसके जो बंधन है एक दूसरे के वो वृषभ वज्र का नहीं है। नाराज सहनन में शरीर में हड्डियों की संधि यानी जो जॉइंट्स है वे सामान्य नाराज द्वारा कीलित है, वज्र समान नाराज द्वारा नहीं है, उसे नाराज सहनन कहते हैं। अर्ध नाराज यानी जो हड्डियों की जो संधि यानी जो नारा जॉइंट है वो नाराज द्वारा अर्ध कीलित है, पूरा का पूरा जॉइंट नहीं, जैसे आधा ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ आधा ही जॉइंट कीलित है। ने जिस शरीर में वज्र की हड्डियां नहीं है, ऑर्डिनरी है और वे परस्पर कीलित है, उसे कीलित सहनन कहते हैं। कीलित है ने एक दूसरे के ऊपर ऐसे घूमते हैं, जैसे हमारा नी जॉइंट दो हड्डी सेपरेट है, हड्डी हड्डी से जुड़ी नहीं है ना, उसमें कीला है, बाहर से जो कुछ उसका वेस्टर्न है, बाहर से जो वेस्टर्न है ना मसल्स के द्वारा और वो जो पेरियोस्टियम है उसके द्वारा वो जुड़े और वो एक दूसरे पर ऐसे घूमते रहते हैं। या जो एल्बो जॉइंट वगैरह वो थोड़ा अंदर एक दूसरे में फिक्स भी है उसके कहते कीलित है। और असंप्राप्त श्रुपाटिका ने हड्डियां परस्पर में प्राप्त नहीं होती, नसों के द्वारा वो एक दूसरे से बंधी हुई है, जैसे उंगली की हड्डियां है वो नसों के द्वारा है, वो एक दूसरे में फिक्स नहीं है, हड्डियां सेपरेट है और वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे घूमती रहती है परस्पर में बंधी हुई है, उसे असंप्राप्त श्रुपाटिका सहनन कहते हैं। अब ये जो हमने मोक्ष जाने वाली बात यहाँ भी लिखी है, जीव में नीचे के तीन सहनन होते हैं और यहाँ के जो वर्तमान में भरत क्षेत्र में पंचम काल में नीचे के तीन सहनन पाए जाते हैं। अब ये जो नीचे के तीन सहनन है उसमें सातवें गुणस्थान तक का, पुरुषों में सातवें गुणस्थान तक का ही पुरुषार्थ हो सकता है, क्योंकि यहाँ उच्च ऊपर के तीन सहनन नहीं पाए जाते हैं तो श्रेणी का पुरुषार्थ भी नहीं होगा। मोक्ष जाने का यानी क्षपक श्रेणी का पुरुषार्थ तो मात्र कौन से वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाले करेंगे, पर अन्य जो दो है ना वज्र नाराज और नाराज वो तो ग्यारह गुणस्थान तक भी जा सकते, श्रेणी चढ़ सकते, उपशम श्रेणी चढ़ सकते, क्षपक श्रेणी वे भी नहीं चढ़ सकते। ऐसे अलग अलग ये जो नियम किसी ने बनाए नहीं है, केवल ही भगवान ने जानकर बताए हैं, है ना? नहीं तो हमें क्या लगता है ये स्त्रियों पर अन्याय क्यों? पहले में पहले मैं जीव हूँ ऐसा नहीं मानकर मैं स्त्री हूँ ऐसे पहले माना और फिर उस पर अन्याय हो रहा है ऐसी घोषणा कर देते हैं। जीव है जब मोक्ष मार्ग में लगेगा तो निश्चित रूप से सम्य दर्शन होने के पश्चात अगले भव से उसको पुरुष पर्यायी मिलने वाली है, तो वो जीव कहाँ स्त्री रहा, ध्यान ना, तो वो तो पुरुष पर्याय में चला जाएगा और देव के बाद फिर मनुष्य होगा, फिर भी पुरुष ही होगा और पुरुष पर्याय से ही वो मोक्ष जाएगा मुनि होकर। ये तो यहाँ एक बात लिखी है 26 पेज पर, जहाँ स्पर्श रस गंध वर्णन लिखा है ना उसके ऊपर एक बात फिर से बता देती हूँ कि कोई भी सहनन जीव को पुरुषार्थ में साधक भी नहीं है और बाधक भी नहीं है, क्योंकि सहनन तो परद्रव्य है, वो शरीर की अवस्था है, उससे जीव का तो क्यों ध्येय है, उससे जीव में कुछ नहीं होता है। फिर भी जब जब जीव स्वयं अपनी योग्यता से पुरुषार्थ करता है तो कौन सा जीव कहाँ तक कर सकता है, क्योंकि उसके पर्याय में ऐसी बातें सहज सुमेल रूप से पाई जाती है, इसलिए उसका यहाँ ज्ञान कराया जाता है कि हमें पता है कि वो स्त्री का तो ये पांचवें गुण स्थान तक ही पुरुषार्थ हो सकता है। जो द्रव्य से पुरुष है वो तो सातवें गुण स्थान तक का पुरुषार्थ अभी पंचम काल के जीव करेगा, पंचम काल में कोई जन्म से समयदृष्टि हो ही नहीं सकता। ये सारी जो बातें है वो कर्मानुयोग के विविध नियमों पर आधारित है। कौन से कर्म का उदय कहाँ पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता है, उसमें तो बहुत डिटेल है। अभी तो हमने बहुत एकदम स्थूल चर्चा यहाँ ली है, कौन से गति में कौन से कर्म का उदय होगा, कौन से गति वाले का कौन सा बंध हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, ऐसी बहुत सारी बातें। अब हम तो ये यहाँ तक आए ना, पिंड प्रकृति देख रहे हैं, तो अभी हमने सहनन नाम कर्म की बात देखी, उसके बाद स्पर्श रस गंध वर्ण नाम कर्म। स्पर्श की हमें मालूम है, स्पर्श की 8 पर्याय है, फिर रस की 5 है, गंध की 2 है, वर्ण की 5 है। ऐसे जो अलग अलग पर्याय के साथ हम उसके डिविजन करेंगे तो 20 हो गए, मिला हाँ। तो इन कर्मों के उदय के निमित्त से क्या होता है कि ये जो शरीर की रचना होती है उसमें विशिष्ट जाति का किसी का उष्ण स्पर्श है ना, हम देखते किसी के ठंडे हाथ रहते, किसी के हाथ हमेशा गर्म रहते, तो वैसे वैसे नाम कर्म का वहाँ उदय निमित्त है। तो शरीर में विशिष्ट स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है और उनका नाम क्या है, स्पर्श नाम कर्म, रस नाम कर्म, गंध नाम कर्म, वर्ण नाम कर्म। अभी ये जो उसकी 20 पर्याय है उसके साथ हम उष्ण स्पर्श नाम कर्म, शीत स्पर्श नाम कर्म, हर एक के साथ हम नाम कर्म जोड़ेंगे तो ऐसे 20 अलग अलग उसके उपभेद हो जाएंगे। इसके भी आगे ये लिखे हो सब। अब उसके आगे का नाम है गत्यानुपूर्वी, तिनांग हंसने लगे। ये गत्यानुपूर्वी क्या होता है, गति नाम कर्म तो हमने सुना है, तो ये गत्यानुपूर्वी जब जब गति नाम कर्म बनता है तब तक गत्यानुपूर्वी भी बनती है। बनने के समय उदय में वो उसका साथ नहीं देती, जैसे हमारा मनुष्य गति नाम कर्म का उदय विग्रह गति से शुरू हुआ मरण तक चलेगा, परंतु गत्यानुपूर्वी का उदय मात्र विग्रह गति में, एक छोड़कर एक भव छोड़कर अन्य भव में जीव गमन करता है तो जो विग्रह गति है ना तो वहां ही उसका उदय होता है। तो अभी अभी हमने जो संस्थान नाम कर्म देखा था, तो संस्थान नाम कर्म से क्या होता है, जीव को विशिष्ट आकार प्राप्त होता है और उस आकार में वो परमाणु ग्रहण करके उसमें डालता है। हमें क्या लगता है, कोई मनुष्य का रेडीमेड शरीर होगा उसमें जाकर जीव घुसता होगा, ऐसा नहीं है। शरीर के कारण जीव का आकार नहीं बदला है, जीव स्वयं असंख्यात प्रदेश ही। अब यहाँ से कर्म तेजस और कारमन शरीर के साथ जाता है, जाता है तो जब जाएगा वहाँ जहाँ जन्म लेना है वहाँ उसके संस्थान नाम कर्म का उदय होता है, वैसा उसका आकार बनता है। तो जीव और कर्म का विशिष्ट आकार बना, जैसे मनुष्य आकार बना, फिर वहाँ जब जीव शरीर के परमाणु ग्रहण करता है और उस शरीर की वैसे वैसी रचना हो जाती है। तो ये गत्यानुपूर्वी नाम कर्म क्या करता है, क्योंकि संस्थान नाम कर्म का उदय जब होगा जब जीव जहाँ जन्म लेना है वहाँ पहुंचेगा, तो रास्ते में उसका कोई ना कोई आकार तो रहेगा, तो वो कौन सा आकार रहेगा, तो पूर्व भव का आकार रहेगा। गत्यानुपूर्वी का उसका कार्य क्या, पूर्व भव का आकार विग्रह गति में कायम रखना, जो छोड़ के जा रहा है। अभी कोई मनुष्य मरा, अब वो कुत्ते में जन्म लेने वाला है, कुत्ता होने वाला है, तो कुत्ता होएगा यानी वहाँ जहाँ जन्म लेना है वहाँ जाने पर उसका संस्थान नाम कर्म का उदय होगा और उसको कुत्ते का आकार प्राप्त होगा। विग्रह गति में उसका मनुष्य का आकार चालू है, विग्रह गति के पहले समय से ही उसकी तिर्यंच आयु यानी वो कुत्ते की आयु चालू हो गई, उसको हम कुत्ता जीव कहेंगे, क्योंकि वहाँ उसको तिर्यंच गति का भी उदय चालू हो गया, तिर्यंच आयु भी चालू हो गई, तो वो जीव कौन सा है, कुत्ता। और आकार कौन सा है? मनुष्य। तो मनुष्य के आकार का कुत्ता देखा आपने? हाँ देखा। ये आगम का चक्षु लगाते हैं तो सब कुछ दिखने लगता है। तो घोड़े के आकार का कोई आदमी देखा? हाँ, कौन सा? घोड़ा मर गया, घोड़ा मरा, घोड़े का आकार है ना, घोड़ा मरा और मनुष्य में जन्मने वाला है अभी, विग्रह गति में है, उसकी मनुष्यी चालू हो गई, उसको मनुष्य जीव कहेंगे, मनुष्य गति भी शुरू हो गई, परंतु गत्यानुपूर्वी के कारण उसका वो घोड़े का आकार कायम है। तो घोड़े के आकार वाला मनुष्य विग्रह गति में, उसका कार्य इतना ही विग्रह गति पूर्ता, पूरे लाइफ में कभी उसका उदय नहीं होगा, कुछ कार्य नहीं होगा, परंतु वो बनता तो निरंतर है। जैसे गति नाम कर्म जो है ना, वो निरंतर बनती है, चार में से कोई ना कोई बन देगी, सुबह से शाम तक। अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, देव गति बांधेगा, बाद में कुछ अच्छा साधन के साथ व्यवहार करना है, मनुष्य गति बांधेगा, और फिर झगड़ा कर रहा है तो नरक गति बांधेगा, मायाचार उच्चारी कर रहे तिरंच गति बांधेगा। तो दिन में तो वो तो कितने अलग अलग गति बांधते रहता है, आयु तो जब तक भी बांधेगा तब बांधेगा, परंतु ये गति नाम कर्म तो कंटिन्यूस बांध रहा है, तो चार गति में से कुछ न कुछ बांधता है।
सब गति चालू ही,
हाँ बांधना चालू है। अभी उदय हमारा मनुष्य गति का चल, उदय तो मनुष्य जिस गति में गया है उस गति का उदय चलता रहता है, और दत्तानुपूर्वी का उदय विग्रह गति में, तब उसका फल मिलता है ना, उदय होना है ना उसका फल मिलना। तो ये दत्तानुपूर्वी की भी हम बात कर चुके हैं। अब ये जो पिंड प्रकृति में एक प्रकृति और रहेगी, विहायो गति, विहाय यानी आकाश, और आकाश में गमन कौन करता होगा? पंछी। तो विहाय गति का अर्थ ऐसा नहीं आकाश में, वो ऊपर आकाश में गमन ऐसा नहीं, गमन करना, जैसे हम चलते हैं जमीन पर चल रहे हैं, तो कोई हाथी की चाल होंगी ना, ऐसे हाथी जैसे गज गति से जा रहा है, तो हाथी की चाल, और बदक कैसा चलता है उसकी अपनी चाल से चलता है, तो कुत्ता अपनी चाल से चलेगा, तो उसका जो हरेक की अपनी अपनी अलग अलग चाल है उसको कहते हैं विहायो गति। उसमें ये विहायो गति नाम कर्म निमित्त है। देखो तो अभी सभी जो बातें जो हम अपनी मान रहे हैं, एक एक कर्म को हम पहुंचा रहे हैं, सौंप रहे हैं, अपने खाते में कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा जरा सोच लो, क्योंकि अभी तो ये सुस्वर दुस्वर सब आने वाला है, यशस्कृति यशस्कृति वो बातें सब आने वाली है, ये सब तो कर्म के खाते में डालेंगे, और हम मान रहे थे हमारा यश हो रहा है, हम अच्छा बोल रहे हैं, हम अच्छा चल रहे हैं, हम अच्छा गा रहे हैं, हम गोरे हैं, हम ऊंचे हैं, हम ऐसा है वैसा है वैसा, अब सब कर्म को कर्म का दे दिया तो अपने पास कुछ बचा कि नहीं बचा? अरे अनंत गुणों का ये केवल ज्ञान सर्वज्ञ स्वरूप ही मैं हूँ, मैं अनादि से वही हूँ, पर माना था मैं ये मैं नहीं हूँ, और कर्म का जो जो फल है उसको मैंने अपना स्वरूप माना, तो जिस पर हम गर्व कर रहे हैं इतने दिन से वो तो सारा कर्म का है, अभी पता चला ये अपना माल है ही नहीं है, तो हम पराया माल को ही अपना मान रखे, तो ये चोरी हो गई कि नहीं? अभी बीच में कोई प्रश्न, मैंने ये जो आजकल ये चल रहा है ना क्लोन्स वगैरह, उसकी बात बीच में निकाली, देखो पेज नंबर 19 पर, इसमें अभी जो हमने लिस्ट देखी थी ना नाम कर्म की 18 पेज पर, उसमें 17 होगी, हाँ 17 गुजराती में 17, देखो इसमें पहली 14 तो पिंड प्रकृति है, अभी हमने देखी ना 14 पिंड प्रकृति देखी, ये जो लिस्ट है उसके नीचे और बहुत सारी जोड़ी है, थोड़े अभ्यास से सहज याद हो जाएंगे, इसका अर्थ जानने के लिए तुम उत्सुक होगी, पर उसके पूर्व उन्हें जानने का प्रयोजन ख्याल में रखना चाहिए। इसमें 93 जानकर क्या करें हम है? शरीर के स्पर्श रस गंध वर्ण आकार गति इंद्रिया हड्डियों की रचना तथा उसकी मजबूती चाल आवाज आदि अनेक बातें नाम कर्म के उदय के निमित्त से होती है। इस बात का पता चलने पर शरीर ही मैं हूँ ऐसी अनादिकाल से चली आ रही मिथ्या मान्यता सहज ही नष्ट हो जाती, क्योंकि शरीर पर लिखा है नाम कर्म का नाम लिखा है ना, जिसको मैं अपना स्वरूप मान रही थी आज तक, वो तो नाम कर्म के उदय में बनी हुई परमाणु की रचना है। कर्म प्रकृति के नाम याद करके अपनी बुद्धि की करामत कर दिखाना अपना प्रयोजन नहीं है। देखो हमने तो इतना याद कर लिया उसके लिए ये नहीं है, परंतु इन कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली बातों से मैं स्वयं भिन्न हूँ इस प्रकार से भेद विज्ञान करना ही हमारा एकमेव प्रयोजन, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं। क्योंकि सादा बताते पुद्गल भिन्न है तू भिन्न है, हाँ हाँ हमने तो सुन लिया सुनाया भी, परंतु क्या हम सही स्वरूप में इसको मान रहे हैं? क्या अभिप्राय में कहीं ना कहीं रह जाता है, इसलिए इतनी गहरी बातें जानकर भी हमारा प्रयोजन तो वही सॉल्व होना है। जीव जुदा और पुद्गल जुदा, शरीर भिन्न है कर्म भिन्न है और जीव भिन्न है। यहाँ तो कर्म का और शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया जा रहा है, फिर भी कर्म तो भिन्न है और शरीर भिन्न है, दोनों में कौन सा अभाव है? अन्य भाव। दोनों पुद्गल की वर्तमान पर्याय है ना, दोनों ही स्कंध है, पुद्गल की वर्तमान पर्याय, दोनों में अन्योन्य भाव। अभी हम बता रहे कि ऐसे ऐसे नाम कर्म से ऐसा ऐसा शरीर प्राप्त तो होता है, फिर भी ये निमित्त का कथन है, उन दोनों में भी निमित्त निमित्त संबंध है, हमारे और शरीर में तो उतना भी नहीं है ना। अभी शरीर का जो निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है वो कर्म के साथ बन रहा है, हमारे साथ नहीं। तो हम अपना मान रहे यही मैं हूँ, यह हम अपने अज्ञान से अपनी गलती से मान रहे। प्रत्येक का स्वयं का परिणमन स्वयं में स्वयं के कारण से होता है, यानी शरीर का कर्म का और जीव का, तीन बातें बताए ना, तीनों में ही अपना अपना परिणमन अपने स्वयं की योग्यता से होता, परंतु उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। इसलिए नाम कर्म के कारण शरीर की रचना हुई या जीव ने कर्म बांधा आदि कथन करते हैं। इस प्रकार कथन आने पर भी प्रत्येक परमाणु एवं जीव की स्वतंत्रता अपने ध्यान में रखनी चाहिए, तो मूलभूत रोज एक बार इसको याद करना है कि जीव जुदा कर्म जुदा, जीव स्वतंत्र पुद्गल स्वतंत्र, और दोनों की योग्यता से अपनी अपनी योग्यता से अपने अपने में पर्याय बदलती है। तुम कहोगे कि नाम कर्म के कारण शरीर की विशिष्ट रचना होती है, ऐसा आप कहती हो, और हम तो आजकल प्रत्यक्ष देख सुन रहे हैं कि हमारे वैज्ञानिक उनकी प्रयोगशाला में चाहे जिस वर्णादि के शरीर वाले जीव उत्पन्न कर रहे हैं, ये क्लोन्स वगैरह हो रहे हैं ना जी आजकल, सबका यही प्रश्न है, टेस्ट ट्यूब बेबीज और क्लोन्स की निर्मित हो रही है, तो तुम्हारे कर्मों का क्या हुआ? सबसे पहले यह बात नक्की करो कि कर्म संबंधी यह ज्ञान या कथन हमें सर्वज्ञ से प्राप्त हुआ। ये सारी सर्वज्ञ कथित बातें हैं, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रही। सामने वाला जो प्रश्न है तुम्हारा कर्मों का क्या हुआ, तो तुम्हारा धर्म क्या कहता है, धर्म की कुछ बातें सुननी है, तो ऐसा नहीं कहते कि शास्त्र में क्या लिखा है, तुम्हारा धर्म क्या कहता है, वैसा उससे उसको कुछ लेना देना नहीं। दूसरी बात, वैज्ञानिकों ने जीव का निर्माण किया या शरीर आदि पुद्गलों का? छह द्रव्यों में किसका निर्माण किया? पुद्गल का। अस्तित्व गुण जो कि सामान्य गुण है, इसलिए सभी द्रव्य में पाया जाता है, उसके कारण द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता, वो किसी से उत्पन्न भी नहीं होता, यानी जीव को निर्माण नहीं किया और पुद्गल को निर्माण नहीं किया, इतना तो बात है ना, फिक्स है ना। अब आगे की बात, इसलिए वैज्ञानिकों ने ना जीव को उत्पन्न किया और ना ही शरीर को उत्पन्न किया। वह जीव कहीं से मरकर उस जगह स्वयं की योग्यता से जन्मा है। कभी भी कोई भी जीव नया उत्पन्न होता ही नहीं, अनादि से जितने जीव है उतने ही है और रहेंगे, हमेशा उतने ही रहेंगे। उसमें किसी का नाश नहीं होगा और नए कोई उत्पन्न भी नहीं होंगे। तुम कहोगी वैज्ञानिकों ने उसके शरीर की रचना तो अपनी इच्छा अनुसार कर दिखाई ना। तो छोड़ने वाले ऐसे थोड़े प्रश्न करते हैं। शरीर पुद्गल स्कंध है, आहार वर्गना से उसकी रचना होती है, यह हमें मालूम है। अभी औदारिक शरीर है, आहार वर्गना से निर्मित है। आहार वर्गना अनंतानंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंध है। तो अब तुम मुझे बताओ कि वैज्ञानिकों ने पुद्गल परमाणु उत्पन्न किए, या उनके स्पर्श रसगंध वर्ण आदि गुण तैयार किए, या उनकी पर्याय बनाई। निश्चित करना पड़ेगा ना, हम क्रम से जाएंगे। तुम कहोगी द्रव्य और गुणों को कोई बनाता नहीं है, वे तो अनादि अनंत कायम रहते हैं। शास्त्र थोड़े बहुत पढ़े हैं, ये तो मालूम है कि द्रव्य और गुण तो अनादि से है, उसमें तो कोई वदगत होने वाली नहीं। इसलिए उन्होंने चाहे उन्हें चाहिए वैसी पर्याय उत्पन्न की। वैज्ञानिकों ने उन्हें जैसा चाहिए था वैसा वो क्लोन उत्पन्न किया। प्रश्न यही है ना अपना, देखो ना। अब ये प्रश्न ही पूछ रहे हैं, देखो ना। उन्होंने हरे रंग का खरगोश उत्पन्न किया और बिल्कुल एक सदृश मेंढे तैयार किए। देखिए, हम पहले पढ़ चुके हैं और सिद्ध भी कर चुके हैं कि प्रत्येक द्रव्य या गुण की प्रत्येक पर्याय उनके स्व सामर्थ्य से उत्पन्न होती है। प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण की अनादि अनंत अवस्थाएं सुनिश्चित है। हरेक द्रव्य की अपनी अनादि अनंत अवस्था, एक एक पर्याय निश्चित है। कौन से समय उत्पन्न होगी, कौन सी होगी, कब होगी, किस निमित्त से होगी, सब कुछ निश्चित है। क्योंकि उसमें हरेक में, हरेक पर्याय में पांच समवाय लगते हैं। कोई भी द्रव्य स्वयं की पर्याय को भी करे और दूसरे द्रव्य की पर्याय को भी करे, यह बात तीन काल में कभी संभव नहीं है। तो वैज्ञानिक स्वयं का यानी उनके आत्मा का कार्य भी करे और उनके शरीर का भी कार्य करे, यानी वैज्ञानिक अपने शरीर का भी कार्य नहीं कर सकते, यह बात भी असंभव है। तो फिर अन्य जीवों के शरीर वे अपनी इच्छा अनुसार चाहे वैसा बना दे, यह मान्यता तो महामिथ्यात्व की द्योतक है। वैज्ञानिक भी खोज करते हैं जो उन्हें पता नहीं था, उस संबंध में जानकारी हासिल करते हैं, कुछ बनाते तो है नहीं। वे ना तो नवीन द्रव्य उत्पन्न करते हैं, ना उनमें नए गुण मिलाते हैं और ना ही उनकी पर्याय अपनी मर्जी के अनुसार बदलते हैं। वे वैसा कर ही नहीं सकते। वैज्ञानिक और उनके प्रयोगों की तुम सराहना करती हो या उनके बारे में आदर बुद्धि रखती हो, क्या तुम्हें पता भी है कि महान हिंसा पूर्वक इन क्लोन की उत्पत्ति होती है। उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है अरे वाह कितना अच्छा किया, कितना अच्छा किया। जिसे एम्ब्रियो ने गर्भ कहते हैं, उसमें से विवक्षित पेशी यानी सेल्स या टिश्यू निकालकर उन पर ये प्रयोग किए जाते हैं। बहुत सारे एम्ब्रियो व्यर्थ नष्ट हो जाते हैं, तब चाहे ऐसे सेल्स या टिश्यू हाथ लगते, हजारों तो ऐसे गर्भ जिसको कहते हैं वो नाश हो जाते हैं। एम्ब्रियो गर्भ को कहते हैं, भले वो माता के उदर में पल रहा हो या टेस्ट ट्यूब में, परंतु वह है तो एक पर्याप्त मनुष्य भव। एक एम्ब्रियो ने एक पर्याप्त मनुष्य भव है। एक खून करने वाले को कानून दंड देता है, परंतु संशोधन के नाम पर हजारों एम्ब्रियो पैदा करके नष्ट किए जाते हैं। इसलिए इस प्रकार के संशोधन में आदर बुद्धि का होना महान हिंसा की अनुमोदना करना है, जिसमें स्वयं हिंसा करने जितना ही पाप लगता है। किसी भी विषय के तहत हम जाते हैं ना, तो विचार करने पर उसमें से अनेक बातें पता चलती हैं। आगे भी जो लिखा है ना, ये जो एम्ब्रियोलॉजी के बारे में लिखा है कि जो प्रॉपर्टी वगैरह से यूज होता है, तो उसमें क्या होता है, गर्भ तो उत्पन्न होता है, गर्व होता है परंतु वो टिक नहीं सकता, वो निकल जाता है। यानी कॉपर की लगाने में तो बार बार वो गर्भपात होते रहते हैं, यानी उसमें भी महान हिंसा होती रहती है। यानी वो लगाना या लगाने का दूसरे को एडवाइस देना ये सब महान हिंसा है। यही बात यहाँ विस्तार से बताई। अगले पेज पर दूसरा तरीका देखो तो किसी विषय संबंधी सविस्तार जानकारी हासिल करने पर उसके योग्य अयोग्य का निर्णय हम स्वयं कर सकते हैं। यहाँ भी कर्म संबंधी विस्तृत जानकारी हासिल करने का प्रयोजन यही है कि उसके द्वारा कर्मों से भिन्न निज शुद्धात्मा की हमें पहचान हो। एकत्र विभक्त आत्मा की बात है नहीं, हमें सार में भी बताई, तो यहाँ विभक्त आत्मा की बात कर, इन सारे कर्मों से उनके फल से शरीर से आदि से मैं भिन्न हूँ विभक्त हूँ, उस विभक्त आत्मा की यहाँ चर्चा। मैंने प्रयोजन हमारा निज शुद्धात्मा को जानने का ही है, परंतु जीव इसमें ही ये पुद्गल की पर्याय में ही रचा पचा है, तो इसलिए उससे उसका भिन्न स्वरूप बता देते हैं कि कर्म का ये कैसा फल है, उसमें कैसे कैसे ये बातें बनती है। आज तक कर्म के उदय में प्राप्त होने वाली चीजों को ही हमने अपना स्वरूप और वैभव मान रखा था, उनसे भिन्न मैं एक महान वैभवधारी पदार्थ हूँ इस बात को जाना ही नहीं था, सुना भी नहीं था और माना भी नहीं था। नाम कर्म के कारण शरीर की विशिष्ट रचना होती है, यह भी निमित्त का कथन है। ये जो बाकी बाकी मैंने की थी कि औदारिक वाला की औदारिक जाति के परमाणु क्यों लेता है, वैकरिक शरीर वाला वैकरिक जाति के परमाणु क्यों लेता है, तो उसमें वैसा वैसा नाम कर्म का उदय निमित्त होता है। उसके आगे का पैराग्राफ कि जो ये जो रचना होती है शरीर की विशिष्ट है, उसमें विवक्षित नाम कर्म का उदय निमित्त होता है। मनुष्य और तिर्यंचों को औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय विद्यमान रहता है, इसलिए वे औदारिक जाति के परमाणु ग्रहण करते हैं। उसके साथ साथ विवक्षित स्पर्श रस गंध वर्ण नामक नाम कर्म के उदय में विवक्षित यानी पर्टिकुलर विशिष्ट उसी प्रकार के परमाणु ग्रहण किए जाते हैं। परंतु जीव की क्या भूल है, देखो इसे नाम कर्म के निमित्त से होने वाली पुद्गल की अवस्था न जानकर अज्ञानी जी इन्हें ही अपना स्वरूप जानता है और मानता है, ये उसकी भूल है। हम इनसे भिन्न है और हमारा स्वरूप हमारे लक्षण भिन्न है और इनके लक्षण भिन्न है, परंतु यह जीव ने आज तक उसका स्वरूप उपदेश सुना ही नहीं था, जिनेन्द्र कथित तत्व सुने नहीं थे और इसलिए वो अपने स्वरूप से अनजान था। और जब अपने स्वरूप की उसको पहचान हो जाएगी और इनसे भिन्नत्व पहचानेगा तब उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। समय सार परिशिष्ट के प्रवचन में पूज्य कांजी स्वामी जी कहते हैं, अज्ञानी जीव स्वयं के अस्तित्व को न पहचान कर न मानकर परद्रव्यों के भाव अर्थात पर्याय ही मैं हूँ मानता है, शरीर के पर्याय मैं हूँ ऐसा मानता है। ज्ञान में तो जड़ और चेतन दोनों ही भाव जानने में आते हैं, परंतु अचेतन भाव अर्थात स्पर्शादि यही मेरा अस्तित्व है इस तरह अज्ञानी मानता है। कैसा, मेरा शरीर, मेरा फोटो, मेरा घर, मेरे कपड़े, ऐसा ही इसने आज तक माना है और इन चीजों को जुटाने और टिकाने में ही इसके अनंत भव बर्बाद हो गए हैं। स्वयं में ज्ञान दर्शन आनंद शांति आदि अनंत भाव है उन्हें न मानकर अचेतन भावों को अपना मानकर यह अज्ञानी अचेतन हुआ है, उसने अपने चैतन्य का नाश किया है, उन्हें आत्मघात किया है। आत्महत्या हम कहते हैं तो वो तो महापापी है। वे आगे कहते हैं, ज्ञानी धर्मी जीव मानते हैं कि स्वभाव और प्रभाव को जानने वाला मैं हूँ, ये शरीर आदि का ज्ञान मुझे हो रहा है और अपने स्वभाव का भी ज्ञान हो रहा है कि जानन रूप जो कार्य हो रहा है उसको भी मैं जान रहा हूँ, शरीर के भाव को भी जान रहा हूँ, यानी स्वभाव को भी जानने वाला मैं हूँ, प्रभाव को भी जानने वाला मैं ही हूँ, परंतु मैं प्रभाव रूप नहीं हूँ। प्रभाव को जानता तो हूँ, जानता तो हूँ, परंतु प्रभाव रूप मैं नहीं हूँ। अपने ज्ञान में, अपने भाव में प्रभाव जाने जाते हैं, यह अपना स्वयं का भाव है। इन बातों को ध्यान में रखकर अब हम नाम कर्म की प्राणो उत्तर प्रकृति का स्वरूप एवं कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। मुझे पता है तुम भी इन्हें जानने के लिए उत्सुक हो। लब्धि के प्रकरण में इन प्रकृतियों के संबंध में चर्चा होगी, तब उलझन न हो इसलिए ये अभी यहाँ चर्चा हम करेंगे। अभी तो हमने पिंड प्रकृति देखी 14, अब जो उर्वरी जो सिंगल सिंगल जो है प्रकृतियाँ, उसकी भी चर्चा हम शाम को करेंगे इसके आगे। बोलो महावीर भगवान की जय। सामान्य